अब हम हमारा वन टू वन थर्ड सेशन शुरू कर रहे हैं. सभी एक बार मैं वन टू वन टॉक थर्ड जो कंडक्ट करेंगे इनवाइट करना चाहूंगी हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर सारिका ठाकर जी का. आप मंच पर आए और अपना आसन ग्रहण करें और साथ में ज्योति बहन जो आप टीवी जर्नलिस्ट दिल्ली से पधारे हैं और सारिका ठाकर जी डीन एंड डायरेक्टर निम्स इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन जयपुर से आए, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है. हम सब भी तालियों से उनका स्वागत करेंगे. तालियां गूंजनी चाहिए.
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. तो आज के इस वन टू वन टॉक का विषय है AI यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में आध्यात्मिक मूल्यों की सुनिश्चितता. तो बहुत ही सुंदर टॉपिक है और आज हमारे साथ गेस्ट हैं डॉक्टर सारिका ठाकर जी जो कि डीन और डायरेक्टर हैं निम्स इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से और आपका पत्रकारिता के 15 साल का एक्सपीरियंस है. PR में भी, प्रोडक्शन हाउस में भी आप जाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, साथ ही आप इंडस्ट्रियल में भी उनकी आप अपना कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं समय समय पे. और चूंकि इंस्टीट्यूट से हैं तो जो मीडिया के जो छात्र हैं उनको भी दिशा निर्देशन, उनको भी गाइडेंस देते रहते हैं. तो सबसे पहले हम सारिका जी का स्वागत करते हैं. ओम शांति. तो दीदी, हम आपसे सबसे पहले आज के विषय के बारे में ही. अच्छा, तो इससे पहले भी 2 सत्र हुए, आप सभी ने काफी कुछ उसमें अपना भी कंट्रीब्यूशन दिया, आपके भी क्वेश्चंस उसमें सॉल्व हुए. अभी हम AI के बारे में बात करते हैं. AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में आध्यात्मिक मूल्यों की सुनिश्चितता. तो सबसे पहले सारिका जी, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि AI में आध्यात्मिक सुनिश्चितता को हम कैसे निश्चित करें.
जी, ओम शांति. अभी मुझे लग रहा है लंच ब्रेक से पहले सभी थोड़ा सा वैसा महसूस कर रहे होंगे, लेकिन एक बार साथ में सब बोले ओम शांति. जी, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है, जो विषय है, ये हमारे लिए ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. जो दीदी ने अभी प्रश्न किया कि AI के युग में आध्यात्मिकता की कैसे सुनिश्चितता की जाए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है. चाहे हम जीवन काल के चारों चक्रों में भी, बचपन से लेकर किशोरा अवस्था, युवा अवस्था, उसके बाद प्रौढ़ा अवस्था तक की बात करें, तो कहीं ना कहीं इंसान इस कश्मकश में उलझा रहता है कि आखिर किया क्या जाए. पहले भी इतने सारे विचार उठते थे, AI के जमाने में इतना सारा कंटेंट हमारे सामने आ गया है कि मान लीजिए एक सवाल पूछते हैं तो आपके पास 10 से 20 उत्तर आ जाते हैं. उनमें से कौन सा सही चूज करें, कैसे चूज करें, ये कौन तय करेगा, ये कौन हमें सिखाएगा, इसका उत्तर भी हमारे ही पास है. इसका उत्तर हमारे जो भारतीय सनातन संस्कृति में 2 महाकाव्य हजारों वर्षों पहले लिखे गए, उन महाकाव्यों में इसका उत्तर इतने सालों पहले भी लिख दिया गया जो कि आज भी सर्वथा सत्य है. महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण की बात करती हूँ. आध्यात्मिकता की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो उत्तर है, दीदी ने जो भी प्रश्न किया, इस प्रश्न का उत्तर इसी में है. जो ये श्लोक है, इंद्रियाणि पराणया हुरिंद्रे ये भया परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परस्तस्तु स. अर्थात शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से श्रेष्ठ क्या है, आत्मा. तो देखिए, इतने हजारों वर्षों पहले सतयुग का काल, त्रेता युग में, द्वापर युग में जिन महाकाव्यों की रचना की गई, श्रीमद् भगवद गीता की रचना की गई, उसमें एक श्लोक से आज का जो हमारा विषय है कि कैसे AI के युग में आध्यात्मिकता का हम सरोकार कर सके, तो क्या है, इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है, मन. मन से श्रेष्ठ,
बुद्धि,
बुद्धि से श्रेष्ठ
आत्मा।
तो आत्मा सर्वश्रेष्ठ है। जब एआई की उपयोगिता आप कर रहे हैं, अध्यात्म की हम बात कर रहे हैं, तो हमारी चेतना, हमारी आत्मा स्वयं आपके निर्णयों का निर्धारण करती है। जहां पर टेक्नोलॉजी, विज्ञान के पास कोई उत्तर नहीं रहता, लेकिन आपकी चेतना के पास, आपकी आत्मा के पास उसका उत्तर रहता है। और दूसरा इसका जो पक्ष है, मैं बताना चाहूंगी रामायण के माध्यम से। हमने रामायण में स्वामी तुलसीदास जी ने एक श्लोक जो लिखा है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न किरतार, अर्थात संसार को जड़ कहा गया है। जड़ मतलब मशीन, मशीनी रूपी जो भी काम करते हैं, और चेतना आपकी आत्मा। कि संसार कैसे चल रहा है, जड़ से चल रहा है और चेतन से चल रहा है। जड़ संसार है और चेतन आपकी आत्मा है। तो श्रीमद् भगवद गीता, रामायण में आपके इस प्रश्न का उत्तर स्वतः निहित है। और कोई भी प्रश्न जब आपको एआई और आपके रोजमर्रा के जीवन के बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर किसी के पास नहीं होता, उसका उत्तर आपको इन्हीं पंक्तियों में, इन्हीं वाक्य में हमारे अध्यात्म ने, हमारी सनातन संस्कृति ने इतने वर्षों पहले लिख कर दिया। जी,
तो जैसे सारिका बहन ने कहा कि जो क्वेश्चंस के आंसर आज एआई दे रहा है, कहीं ना कहीं उसका मूल भारतीय संस्कृति, हमारे शास्त्रों और हमारे वेदों में पहले से दे रखा है। तो चलते हैं हम आगे की ओर और जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि चार चरण हैं हमारे जीवन के, तो जीवन के हर पड़ाव में एआई और सृष्टि को आप किस तरीके से देखते हैं, कि दोनों को हम सामंजस्य बना के कैसे ले चलें।
जी, हम सभी यहाँ पर बैठे हैं, सब चारों अवस्थाओं को जीते हुए और आने वाले पड़ाव भी हमने पार करने हैं। अगर सनातन संस्कृति 7वीं शताब्दी की बात करूं, 18वीं शताब्दी की बात करूं, जो हमारे महान राजा हुए और आदि शंकराचार्य से लेकर, जहां चार धाम की यात्रा, चार वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और उपनिषदों की रचना के साथ साथ हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान देने के लिए हमारे अंदर जो मोह है उसको कैसे हम त्याग सकते हैं और जीवन शक्ति को कैसे चला सकते हैं, वो ज्ञान देने के लिए शिल्पकारों ने मंदिरों के ऊपर आकृतियों का प्रयोग किया, आकृतियां बनाई। बहुत से, अगर आप 7वीं और 18वीं शताब्दी में, अगर माउंट आबू में दिलवाड़ा टेंपल भी, हम आप सब गए होंगे यहाँ, जब भी हम आबू राज में आते हैं तो वहां पर भी क्या संदेश है, पूरे जीवन चक्र का संदेश हमें दिया जाता है कि आप बचपन, बाल्यकाल से किशोरावस्था में आते हैं, युवावस्था में आते हैं, उसके बाद आपका प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था शुरू हो जाती है, आगे का वानप्रस्थ आश्रम, उसमें कैसे आपको आचार व्यवहार किस प्रकार से करना है, योग युक्त होकर अपना हर कर्म आपको कैसे करना है, वो ज्ञान, वो शिक्षा, वो भी हमें अपने अध्यात्म श्रीमद् भगवद गीता से मिली है। आज एक सबसे बड़ा जो विरोधाभास है, हम बचपन से गीता, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते आ रहे हैं। अक्सर मैं अपने, अगर बाल्यकाल की बात करूं तो माता पिताजी साथ बैठ जाया करते थे और गीता का पाठ सुनाया करते थे। शायद बड़े होते तक रोज हमने रात में गीता का पाठ 18 अध्याय सुना है। जैसे एक श्लोकी अगर मैं भगवद गीता की बात करूं, आदौ देवकी देव गर्भ जननम, गोपी ग्रहे वर्धनम, माया पूतना जीवतापहरणम, गोवर्धनो धारणम, कंसा छेदन कोरवादि हनन, कुंती सुता पालनम, एतद श्रीमद् भगवत पुराण कथितम श्रीकृष्ण लीलामृतम। कि पूरे उनके जीवन काल को 4 श्लोकों में बताकर कि कैसे आपको अपना योग युक्त कर्म करना है, अपने जीवन का कल्याण करना है, मानव का कल्याण करना है, ये सारी चीजें हमें अपने अध्यात्म से सीखने को मिलती हैं। अगर आप बाल्यकाल में हैं तो बच्चों में ये संस्कार हो कि कोई भी अच्छा या बुरा करने से पहले एक बार जो हमारे योगी राज श्री कृष्ण ने संदेश दिया कि कर्म करते जाएं, फल की इच्छा ना करें, उस पर, उस सिद्धांत पर चलते हुए किस प्रकार से जीवन जीना है, वो संस्कार हम आप सभी अपने बच्चों को, परिवार में दे रहे होंगे। और युवा अवस्था में आपके सामने आपकी 5 हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी छठी जो सिक्स्थ सेंस है उससे आपको कैसे अच्छा क्या बुरा, हालांकि हम सब जानते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी चेतन अवस्था को जागृत करने के लिए कोई एक छींटा मार दे, कोई एक अग्नि की लौ को प्रज्वलित कर दे, कोई ना कोई ऐसा इंसान या यूं कहें कोई प्रेरणा सूत्र हमारे जीवन में होता है या हमें जरूरत है कि सोए हुए को जगा दे। तो युवा अवस्था में ऐसे आदर्श व्यक्तित्व का हम अनुसरण करें। एआई के जमाने में ठीक है, टेक्नोलॉजी विज्ञान को हम हाथ में पकड़ सकते हैं, उसमें हम अपनी मास्टरी कर सकते हैं, पर किसका प्रयोग कहां और कितना करना है जिससे आपका जीवन फूल की भांति सुगंधित हो सके, आप दूसरे के बारे में या मानव कल्याण के बारे में हम सोच सके, वो तय करना भी हमारी चेतना का काम है। और अगर सनातन संस्कृति के जितने भी आदि शंकराचार्य जी ने जब पूरी यात्रा की, पैदल यात्रा करते हुए चार धाम और सभी हमारे जो धार्मिक संस्कृति है उसको एकजुट करने के लिए जो संदेश दिया, मंदिरों में भी आप देखेंगे हमारी इन चारों अवस्थाओं का वर्णन है कि आपको अपना बाल्यकाल किस प्रकार से जीना चाहिए। हाथी घोड़े सभी के चित्र के द्वारा आपको भरपूर आनंद लेना चाहिए। उसके बाद आप युवा अवस्था में अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों को पकड़ते हुए, उन पर अपना काबू रखते हुए, उनको असंयमित रूप से नहीं संयमित रूप से प्रयोग करते हुए, योग युक्त कर्म करते हुए आप अपनी युवा अवस्था उसको आप जिए। उसके बाद आप वृद्धावस्था या प्रौढ़ावस्था की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वानप्रस्थ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको अपनी आगे धार्मिक यात्रा, धार्मिक चेतना, अध्यात्म को आप किस प्रकार से अपने जीवन का जीवन को आपने जिया, उसके बारे में हम उन बहुत सारे शिल्पकारों ने जो जो चीजें कहानियों के रूप में पत्थरों पर उकेरी हैं, वो साफ संदेश इतने आदि काल से चला आ रहा है और अब भी हम उनका अनुसरण करें।
जी, तो कितनी खूबसूरत बात कही सारिका दीदी ने। और जैसा कि आपने शुरुआत में किया कि ये जीवन जो है जड़ और चैतन्य, ये संसार जड़ है और आत्मा जो चैतन्य है, तो एआई भले हमें सरलता से या तेजी से काम कर सकता है या सुविधा दे सकता है, लेकिन जो आत्मदर्शन है वो हमारी धार्मिक चीजों से, जैसे कि आपने युवावस्था की बात की, तो जो आज का युवा है उसके साथ चैलेंज है कि उसको टेक्नोलॉजी के साथ चलनी है, साथ ही उसको अपनी इनर स्ट्रेंथ के लिए, इनर पावर के लिए उसको स्पिरिचुअलिटी को भी लेकर साथ में चलना है, तो वो दोनों को पैरेलल कैसे लेकर चल सकता है?
अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज हम विश्वविद्यालयों में और विभिन्न कॉलेज स्कूल में जो एकेडमिशन होने के नाते हम महसूस कर रहे हैं कि सहन शक्ति और वो जो सीमा का कितना, हमारी सीमा कितनी है, हमारा दायरा कितना है, पेशेंस की कमी है, धैर्य की कमी है, ये सबसे ज़्यादा जो इशू है अभी विश्वविद्यालयों में हम फेस कर रहे हैं कि बच्चा तुरंत ही तो खुश हो जाता है और तुरंत ही उदास हो जाता है, उसको स्टिमुलेशन खुशी कि तुरंत उसको खुशी चाहिए और कोई भी छोटी से छोटी बात उसको खुश भी कर देती है और उसको इतना निराश भी कर देती है कि वो जीवन का सबसे अहम फैसला जब लेने लगता है तो दिमाग की जो चेतना है वो शून्य हो जाती है। आप अक्सर देखते होंगे बहुत सारे सुसाइडल केस हैं परिवारों में, कॉलेजेस में, विश्वविद्यालयों में, छोटी सी बात के कारण कि अगर दो दोस्त हैं उनके आपस में कुछ बात बनी नहीं और बहुत बड़ा फैसला या जीवन यात्रा को वो समाप्त कर देते हैं, उस समय आप चारों तरफ कोई विचार नहीं आता, तो उस समय भी जो आपकी अंतरात्मा की आवाज है या यूं कहिए आपका जो इंट्यूशन है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये अगर आप अध्यात्म से जुड़े होंगे या जो हमारा युवा है, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, भाई, हमारे घर के सभी सदस्य, हमें लगता है कि ये बड़ा आसान सा और बहुत आम विषय है, हर कोई बात करता है कि हमें सबको पता है कि डिप्रेशन नहीं लेना है, ऐसी गलत चीजें नहीं करना है, लेकिन फिर भी जब बच्चा कोसों मिलो दूर किसी कॉलेज में पढ़ रहा होता है तो उसके मन में वो एक अकेलापन, क्योंकि हमने बचपन से हम आध्यात्म से नहीं जुड़े, हम योगीराज श्री कृष्ण से नहीं जुड़े, हमने राजयोग नहीं सीखा, अपनी भावनाओं पर कैसे काबू पाना है, कैसे टेक्नोलॉजी विज्ञान का प्रयोग अपने अध्यात्म और अपनी चेतना को बढ़ाने के लिए करना है, हमने बचपन से प्रैक्टिस नहीं किया। ये हम सुनते तो आए हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट हाउ, वो कैसे होगा जब हम उसको रोज प्रैक्टिस में लाएंगे। शायद मैं भी अगर आज यहाँ एक वाक्य सुनकर जा रही हूँ या कुछ विचार लेकर जाती हूँ तो उसको भी अपनाने में, मुझे प्रैक्टिस करने में, जैसे आयुर्वेदा में कहा गया चरक अगर संहिता हम पढ़ते हैं कि कोई भी नियम अगर आप अपनाते हैं तो उसको आपको कम से कम 45 दिन तो आपको करना ही पड़ेगा। 45 दिन का आप नियम लेके चलते हैं और उसके बाद जो दूसरी अवस्था आती है 3 महीना। आयुर्वेद के अंदर आप जाएंगे कि 3 महीने अगर आप कोई विचार या कोई भी औषधि लेते हैं तभी वो आपके ऊपर काम कर पाती है। इसी प्रकार से जितने भी हमारे युवा हैं, कई बार मन में मानसिक भटकाव या बहुत सारी ऐसी अवस्थाएं आती हैं कि क्या सही है क्या गलत है हम तय नहीं कर पाते। अन्यथा अगर हम एग्जाम्पल लें कि कितने ऐसे डिफेंस ऑफिसर्स हुए हैं, अगर हम बात करें सबसे कठिन जो कमांडो ट्रेनिंग किसकी होती है, एनएसजी कमांडोज की भी बात करें, यहां तक कि कितने सारे एनएसजी कमांडोज, डिफेंस ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, आईपीएस जो कठिन परीक्षा देकर अपना मुकाम हासिल करते हैं और एक छोटे से विचार का बोझ ना सहन करते हुए एक गोली दिमाग में दागते हुए जीवन यात्रा समाप्त कर लेते हैं। इससे क्या समझ आया कि एक विचार आपके पूरे शरीर की शारीरिक संरचना को हिला सकता है, क्योंकि हम अध्यात्म से नहीं जुड़े। आज हम युवा को क्या संदेश दे रहे हैं कि बेटा नीट की तैयारी करो, MBBS करनी है आपको, MS करनी है आपको, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, लेकिन क्या हम उनको ये सिखा पा रहे हैं कि किसी दिन अगर ऐसे द्वंद में आप फंस गए, क्या सही क्या गलत, बहुत सारी ऐसी अवस्थाएं हैं, तो उस समय पर आपको अपनी चेतना की आवाज कैसे सुननी है, वो शिक्षा, वो बीज, जैसे कल दीदी ने भी यहां मन से कहा था कि जब तक आप उस अध्यात्म के बीज को हम अपनी अंतरात्मा में नहीं बोएंगे, युवाओं के मन की जो धरती है उस पर अध्यात्म का बीज नहीं बोएंगे, तब तक हम अपने जीवन को उस स्वर्ण काल में महसूस नहीं कर पाएंगे। तो शायद आज जितने भी मीडिया मनीषी और हमारे पत्रकार बंधुजन बैठे हैं, तो आप युवाओं तक ये संदेश जरूर दें कि कैसे भी दिन में एक काम वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ करे, चाहे वो गीता का एक अध्याय हो, चाहे रामायण का एक श्लोक हो, चाहे किसी भी ग्रंथ की, सुखमणि साहब या किसी भी ग्रंथ की कोई एक पंक्ति या लाइन वो अवश्य जरूर पढ़े, 5 मिनट वो ध्यान करें ताकि वो इन सभी समस्याओं से निजात पा सकें और अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकें, फूल की तरह खुशबू महका सकें।
जी, बहुत ही खूबसूरत विचार आपने रखे। तो युवाओं को जैसे AI से वो पद, पोजीशन और प्रसिद्धि तो पा सकते हैं, लेकिन उन्हें अध्यात्म का भी बीज बोना पड़ेगा। आज ये जब टॉपिक निकला तो मैंने भी, हम में से सभी मेजॉरिटी मुझे लगता है AI का यूज करते ही होंगे और मैं भी करती हूँ क्योंकि हम मीडिया प्रोफेशन से जुड़े हैं, तो मैंने AI पे ही सर्च किया कि किस किस तरीके से AI का यूज हो रहा है। तो मेडिकल फील्ड में जैसे निकुंज भाई भी हमारे पहले बात कर रहे थे कि भाई रोबोटिक सर्जरी में या टेस्ट के लिए बहुत सारी मेडिकल फील्ड में AI वरदान है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चे टेस्ट दे सकते हैं, लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि आजकल AI का एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में, AI कंपेनियन करके भी ऐप है, लोग उसको लोनलीनेस को दूर करने के लिए, जो बात आपने कही युवा जो आजकल है लोनलीनेस, तो ऐसे भी उसका यूज कर रहे हैं, इस तरीके से भी AI का, AI कंपेनियन का यूज कर रहे हैं। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं?
AI कंपेनियन, सबसे पहले हम किसी भी कैसी भी अवस्था में होते हैं, हमें साथी की तलाश होती है, चाहे दोस्त के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, पत्नी के रूप में, किसी भी रूप में हो। आज जो अकेलापन लोग महसूस कर रहे हैं तो AI कंपेनियन एप्स उनको वैसी बात करने के लिए, क्योंकि संचार, हम सब सूचना के राजदूत हैं, संवाद हमारे लिए कितना उपयोगी है वो हम सब जानते हैं। शायद एक दिन भी अगर हमें वो एकांत हम रहते हैं तो विचार बहुत उठते हैं, नहीं रह पाते हैं। अब जैसे अगर हम जापान की बात करें, जापान में मिंडोर नाम का जो एक एआई रोबोट वहां पर उन्होंने ईजाद किया, वो वहां का जो भी पूजा और जितने भी काम होते हैं वो करता है। तो मिंडोर पुजारी के रूप में सारे काम कर रहा है, लेकिन जब आप अपनी परेशानी उसके पास लेकर जा रहे हैं या आपके मन में कोई संवेदना है, कोई ऐसी वेदना है, कोई ऐसी पीड़ा है, आप वैसी इम्पैथेटिक फीलिंग उसको करवाना चाह रहे हैं, तो क्या वो रोबोट, क्या वो एआई कंपेनियन आपकी संवेदना, आपके एम्पैथी, आपके एथिक्स के साथ जुड़ पाएगा? क्योंकि सबसे बड़ा जो हमें इश्यू आ रहा है, नो डाउट एआई से कुछ भी हमें आज पूछना होता है, शायद हम किसी दूसरे से ना पूछ पाए, हमें कुछ सवाल और इतना सारा जो डेटा है ऑन द स्पॉट एक ही बॉक्स पे मिल जाता है। लेकिन जब एम्पैथी की बात होती है कि अगर मैं आपके स्थान पर खड़े होकर आपकी पीड़ा में आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप उस संवेदना को कैसा जी रहे हैं, और मैं आपके दुख में स्वयं को महसूस करके उसका सॉल्यूशन बता पाऊं, क्या एआई कंपेनियन वो पीड़ा, वो संवेदना का सॉल्यूशन दे पाएगा? क्या एथिक्स जो मैं बचपन से मेरे अंतरात्मा में लेकर चल रही हूं, क्या वो कर पाएगा? ठीक है, अभी हमने देखा जैसे काशी और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी तमिल संगम हुआ उसमें भाषिणी एआई का प्रयोग करके तुरंत ऑन द स्पॉट जो भी कन्वर्जन ट्रांसलेशन के थ्रू सारा अपना कन्वर्सेशन सबने सुना। अध्यात्म में एआई का प्रयोग दूरियों को मिटाने के लिए किया जा सकता है कि उत्तर का व्यक्ति है वो दक्षिण की भाषा समझ पाए, दक्षिण का व्यक्ति है वो उत्तर की भाषा और उसका अनुवाद करते हुए कुछ नई चीजें सीख पाए, वो वहां तक बहुत सार्थक है। लेकिन जहां संवेदनाओं की बात आती है, जहां सहानुभूति की बात आती है, जहां एम्पैथेटिक फीलिंग्स की बात आती है कि शायद अगर आज मैं हूं और आप कोई पीड़ा मेरे सामने लेकर आते हैं, मैं आपकी भावना को समझ पाऊं, वो भावनाएं अभी एआई में आने में समय लगेगा। इसीलिए अभी जो MANAV मानव जो विजन है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक रोड मैप दिया है एआई को कि जिस पर एआई को काम करना होगा, ये MANAV ये रोड मैप विजन क्या है। M4 मॉरल, हमारी नैतिकता, अकाउंटेबल कि हम कितने अकाउंटेबल हैं, कितने उत्तरदायी हैं, नेशनल हमारी राष्ट्रीयता के लिए हम कितना भरसक प्रयास कर रहे हैं, एक्सेसिबल है या नहीं, और वैलिड। तो ये मानव का जो रिवीजन और रोड मैप मोदी जी ने दिया है ये कहते हुए कि हमारे अभी एआई में भावनाएं नहीं है, तो देखते हैं कि एआई इस पर कितना काम कर पाती है। लेकिन उत्तर अभी भी वही है जैसा श्रीमद् भगवद गीता में लिखा था कि सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, और जो हमारे जो एक श्लोक है गीता के दूसरे अध्याय में, योगस्थ कुरु कर्माणि, कि हमें अपने कर्मों को योग में स्थिर होकर करना है और कुशल कर्म करना है, और शायद एआई कंपेनियन जब इस श्लोक के अनुसार काम करना शुरू कर देगा तो शायद ये विजन भी कंप्लीट हो पाएगा।
तो आपने जैसा कहा कि एआई अनुभूति नहीं करा सकता है, वो आपकी संवेदनाओं को, आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकता है, इन्फॉर्मेशन दे सकता है आपको, लेकिन आपकी भावनाओं को, आपके जो आपकी संवेदनाएं उनको नहीं समझ सकता। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसी पर है कि मनुष्य का जो मनोविज्ञान है, तो एआई का इस पे बहुत, मनोविज्ञान पर बहुत असर हो रहा है आजकल, बच्चों पे इसका, उनको एडिक्शन हो रहा है, वो लोनलीनेस में जा रहे हैं जैसे एआई कंपनी। तो ऐसे में इस दुष्प्रभाव को कम करने में स्पिरिचुअलिटी को कैसे काम आ सकती है।
जी, अब मनोवैज्ञानिक अगर इनकी बात करते हैं तो जब भी आज हम सभी को पता है, बहुत नॉर्मल सा ये रोजमर्रा का है कि डोपामाइन ओवर स्टिमुलेशन होता है। जब भी आप क्षणिक सुख के लिए, आप एक रील देखने के चक्कर में पूरा डेटा, हम कभी कभी 2 GB डेटा है वो मेरे ख्याल से हम 1 घंटे में, ये सबके साथ है, मेरे साथ ही शायद जितने सब बैठे हैं, ये जब एक बार हमारे पास समय है तो हम जो हमारा डोपामाइन ओवर स्टिमुलेशन है और क्षणिक सुख के लिए कि हमें अच्छा लग रहा है कुछ कुछ समय के लिए, हम लंबी अवधि की मूवीज देखने की बजाय हम रील्स देखकर खुद को खुशी अनुभव करवा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर ये चीज हम अगर अपनी लाइफ में लंबी अवधि के लिए करते हैं तो हम इसी डिजीज का शिकार हो जाते हैं। फिर हम कभी भी कोई हमारा जो लॉन्ग विजन है, कोई दूरदर्शी विचार है या जीवन में हमें क्या करना है उसको विजुअलाइज करने में हमें फिर या किसी भी युवा को दिक्कत आ सकती है। इसीलिए स्टेबिलिटी, स्थिरता या यूं कहिए कि राजयोग एक माध्यम है ध्यान करने के उद्देश्य से या कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए, तो हमें कुछ प्रयास खुद से ही करने होंगे। क्योंकि न्यूरोलॉजिकल जितने भी अगर हम अपनी नर्व्स को समझें, एक उदाहरण देती हूँ, अभी मैं आपके सामने एक लाइन बोलूंगी, आप बताना कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन आंख बंद करिएगा, आप सीधे बैठ के आपको आंख बंद करके जो मैं शब्द यहां से बोल रही हूं आपको सिर्फ महसूस करना है। हम देखते हैं कि मेरे शब्दों से आपके मन पर क्या विचार पड़ रहा है। आज हम माउंट आबू की धरा पर हैं और माउंट आबू ज्ञान सरोवर से निकलते निकलते जब हम आगे गए, हमें दूर एक गोलगप्पे की दुकान दिखी और वहां पर गोलगप्पे अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के सूजी के आटे के रखे हुए थे। वहीं पर इमली की चटनी है, साइड पे हरे धनिए की चटनी है, आलू है, प्याज है, टमाटर है, और तुरंत गोलगप्पे वाले की जो शॉप है उसने आपको गोलगप्पे परोस कर दिए। खट्टा मीठा इमली का पानी तुरंत डलते ही आपने मुंह में वो गोलगप्पा खाया। पानी पूरी खाते ही आपके जीभ पर खट्टा मीठा तीखा स्वाद आया और वो चटकारा लेते ही आपको बहुत स्वाद लगा। आंखें खोलिए, अब गोलगप्पे का स्वाद किस किस को आया? चलिए, जितने बैठे हैं उनमें से 10 लोगों को पानी पूरी गोलगप्पे का पानी का स्वाद आया। अब यहां से आप अपनी चेतन अवस्था की आप कितना महसूस कर पाते हैं, कितना फील कर पाते हैं, आप खुद को जज कर सकते हैं। अगर आपने ऊपरी स्तर पर, ऊपरे लेवल पर सोचा है कि गोलगप्पा हो ही नहीं सकता हम यहां बैठे हैं, इट मीन्स आपने अपनी अंतरात्मा से विचार ही नहीं किया कि मैडम जो कह रही हैं 2 मिनट बोलेंगी उसके बाद बैठ जाएंगी। लेकिन अगर आप किसी विचार को अंतरात्मा तक लेकर जाके अनुभव करते हो तभी स्वाद आएगा। अभी स्वाद आ ही नहीं पाया क्योंकि आपने ऊपरी स्तर पर सोचा। जिसको ये शब्द सुनकर स्वाद का अनुभव हुआ, इट मीन्स आपकी चेतना जागरूक है। आपने कानों में सुनते तुरंत अंतरात्मा से पूछा कि सच में है, आपको दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको स्वतः आपके मन से वो स्वाद आपने अनुभव किया। हमारे ऋषि मुनि या संत जन वहां बैठे बैठे आपको अपनी भाषा और बोली के माध्यम से क्या आपको आम खाना है उसका स्वाद अनुभव करवा देते थे। तो सारी चीजें भगवान या यूं कहे परमात्मा इज अ सुप्रीम क्रिएचर जिसने ऐसा एल्गोरिदम बनाया है कि किसी पावर कट की आपको जरूरत नहीं, बैठे बैठे आप किसी भी मिठाई का स्वाद यहां से जो हमारी ह्यूमन एआई है यहां से आप बैठकर ले सकते हैं। क्या ये स्वाद, क्या ये संवेदना, जो भी चीज आप चाहते हैं क्या रोबोट ले सकता है? नहीं ले सकता। तो सारी चीजें जैसा भी आपने कहा कि आपको अगर कोई भी चीज की यात्रा शुरू करनी है तो वो खुद से स्व से शुरू करनी, क्योंकि यहां पर इतने सब बंधुजन बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, लेकिन स्वाद किसी किसी को आ पाया। ऐसे ही जो हमारा नाम है, जो ध्यान है या जो स्वाद हम जिंदगी में लेना चाहते हैं, अगर यहां नहीं लिया और बाहर ढूंढ रहे हैं जी इनसे मुझे मिल जाए, आपसे मुझे स्वाद मिल जाए, आपसे मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि भगवान सुप्रीम क्रिएटर जिन्होंने एल्गोरिदम हमारी बनाई है, वो स्वाद आपको स्वतः लेना पड़ेगा। तो जो हमारी एआई है, हमारी एआई को ठीक है, हमें हाथ से हाथ मिलाते हुए नई टेक्नोलॉजीज को अपने हाथ में लेना है, लेकिन स्वयं की अंतरात्मा का जो कौशल है उसको नहीं भूलना और खुद से चीजों को एक्सपीरियंस करना है। आप यकीन मानिए, जब से मैंने यहां पर आना शुरू किया है, ज्ञान सरोवर और जितने भी नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं, सब लोगों से मुलाकात हुई, कुछ लोग काफी कॉन्फ्रेंसेज में हम साथ सब मिल रहे हैं, जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। जो चीज या जो खुशियां, जो संतुष्टि पहले जो हम बाहर ढूंढ रहे थे, आज अगर भीड़ एक साथ बैठी हो और हम अकेले बैठे हों, तो वो अनुभव और वो संतुष्टि अंदर से महसूस कर पा रही हूं। तो ये परिवर्तन यहाँ ब्रह्म कुमारी संस्था यहां से जुड़ने के बाद ये बदलाव अपने जीवन में मैंने पाया है। तो बस इसी के साथ।
तो जैसे दीदी ने कहा कि महसूसता की शक्ति, जितनी महसूसता की शक्ति होगी, क्योंकि बाहर से नहीं वो अंदर से आती है। तो सारिका जी, मैं भी आपको बताना चाहूंगी, जैसे जैसे आप कमेंट्री कर रही थी, तो जैसे ही आपने प्याज का नाम लिया, तो चूंकि हम प्याज नहीं खाते तो मेरी नाक सुकड़ी उस वक्त, और जैसे ही आपने बोला कि इमली की चटनी, तो जो कि मेरी वीकनेस है, तो मुझे बड़ा मुंह में पानी सा भी आ गया। तो महसूसता की शक्ति। अब हमारा जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एआई की हम बात करते हैं, और जैसे ही हम डिजिटल, ज्यादातर आजकल स्क्रीन पे ही हमारा ज्यादा टाइम बीतता है, एआई के समय में ऐसे में डिजिटल डिटॉक्स कितना महत्वपूर्ण हो जाता है।
डिजिटल डिटॉक्स, क्योंकि ये आजकल की आवश्यकता हो गई है। एक शोध के अनुसार एक दिन में हम लगभग 26,000 बार अपने फोन को छू लेते हैं, ये हमें पता भी नहीं होगा। हम सुबह उठते हैं, सबसे पहला काम ये होता है कि फोन में हम समय देख रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज किसका आया है, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात किसका आया है, वो देखने के लिए सबसे पहला स्पर्श हमारा फोन का होता है। तो आप अगर यकीन करेंगे कि 26,000 बार हम फोन छूकर हम अपनी दिनचर्या देखते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन हमने मशीनों के साथ तो कनेक्शन बना लिया, अपने साथ जो कनेक्शन बनाना था, अपनी आत्मा के साथ खुद को जानना था, वो कनेक्शन हम नहीं कर पाए। डिजिटल डिवाइस किस लिए बनाया गया था? कि ये हमें सहूलियत देगा। आज हम एआई से अपने ड्राफ्ट्स, परप्लेक्सिटी एआई यूज करके हम अपनी पीपीटीज बना सकते हैं, अपना कंटेंट, 2 घंटे का काम हम 2 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन 2 मिनट में आप फ्री हो गए, और बाकी के जो आपके पास पूरे 2 घंटे जो बाकी बचे, उसमें हमने क्या करना है, कैसे करना है, खुद को डिजिटली डिटॉक्स कैसे करना है, उस पर हम काम नहीं कर पाए। कोई भी जब डिवाइस बनाई जाती है, कितने भी आविष्कार हुए हैं, वो हमारी मानव कल्याण की यात्रा को सुगम करने के लिए हुए, लेकिन उस सुगमता के सफर में कहीं ना कहीं हम उसके शिकार भी हो जाते हैं। अपने जीवन में कितनी सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, डीप फेक हो गया, इतनी सारी वीडियोस बन रही हैं, बहुत सारी महिलाओं के लिए मतलब एक संकट हो गया है एआई। हम अच्छी बात कर रहे हैं एआई के लिए, लेकिन जो इसकी डार्क साइड है, जो इसका बहुत कड़वी सच्चाई है, कि आज अगर किसी का भी कोई अगर टेक्निकली स्ट्रांग है, तो इसका मिसयूज कैसे भी कहीं भी हो सकता है। नो डाउट हमारे भारतीय संविधान में आईटी एक्ट भी है, और बहुत सारे साइबर क्राइम के लिए साइबर एक्ट भी बने हुए हैं, काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक चीज फ्लोट हो जाती है आईपी पे, ठीक है, आईपी एड्रेस डिलीट भी कर दे, लेकिन फ्लोट हुई चीज और उसके बाद जो चारों तरफ का माहौल बनता है, वो किसी भी युवा के लिए, किसी भी महिला के लिए मतलब सहन करने के योग्य है। क्योंकि इतने सारे केसेस हमने देखे, अगर मैं बात करूं ये महिला आयोग भारत सरकार की, हमारे विभिन्न राज्यों में भी जो अलग अलग स्टेट विमेन कमीशन्स बने हैं, जितने ज्यादा जो केसेस आते हैं, अब एआई के आने के बाद इतनी सारी डीप फेक वीडियोस बना दी गई हैं, चित्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है, आप ना चाहते हुए भी हम उस चीज का शिकार हो रहे हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारी जरूरत है, हमें पता होना चाहिए कि क्या क्लिक करना है। अगर हम हाथ में ये मोबाइल भी ले रहे हैं, इस डिवाइस को ले रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इसका यूज कितना करना है, किस लेवल तक करना है। लाइक साइनाइट है, जब भी कोई टेररिस्ट पकड़ा जाता है तो सबसे पहला काम क्या करता है, अगर साइनाइट उसके पास है, सबसे पहला वो पकड़ा जाता है मिलिट्री के द्वारा, तो क्या करता है वो तुरंत वो जीप पे लगाता है। उसको पता है इतना सा लगाना है, इतना सा लगाते ही उसका जीवन यात्रा जो चक्र है संपूर्ण हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम डिजिटल डिटॉक्स की बात कर रहे हैं कि इसका यूज हमें कितना करना है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा दिमाग इसका गुलाम हो जाए। इंसान ने टेक्नोलॉजी को बनाया है, टेक्नोलॉजी कहीं हमारे माथे पर सवार होकर हमारे रश्मि रथी की तरह सात घोड़े चलाने लग जाए तो सूर्य भगवान कैसे चल पाएंगे, हमारे जो मन के अंदर जो सूर्य रूपी प्रताप है वो कैसे आगे बढ़ पाएगा। चाहे हम सूर्य मंदिर कोणार्क की बात करें, अभी पिछले दिनों मेरा जाना हुआ पुरी जगन्नाथ जी, और वहां पे भी हमने देश की संस्कृति और कैसे किस प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने काम किया। तो डिजिटल डिटॉक्स आज की नीड है। हम चाहे कितने भी बड़े व्यापारी, कितने भी बड़े सीईओ, एडिटर्स, वीसी, रजिस्ट्रार, किसी भी लेवल पर पहुंच जाएं, लेकिन अगर हम डिजिटल डिटॉक्स नहीं होंगे, वो मानसिक शांति, क्योंकि हर कोई इंसान अंदर से एक पुष्प की तरह बनना चाहता है, जैसे पांच पंखुड़ियां, कल मंच से ये बात उठ रही थी कि पुष्प की भांति, पंखुड़ियों की भांति हम अपने जीवन में सद्गुण लेकर आए और उन सद्गुणों की जो खुशबू है हमारे चारों तरफ फैले। व्यक्तित्व तो ऐसा हो कि जिस गली से आप जाओ तो चारों तरफ सुगंधित वातावरण हो, छटाएं बिखरे, आपकी जो सकारात्मकता है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, वो आपके ऑरा में समाहित हो जाए, और वो तभी संभव होगा जब डिजिटल डिटॉक्स कर पाए। जरूरी नहीं है कि 24 घंटे हम फोन साथ रखें, थोड़ी दूर, या जो भी अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे तरीके हो सकते हैं, टेबल पर आप दूर रख रहे हैं, ठीक है, या एक घंटे बाद या दो घंटे बाद व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे रूटीन्स, आदतें हम अपना सकते हैं और अपने जीवन को और भी अधिक खूबसूरत बना सकते हैं।
जी, तो समय सीमा और लिमिटेशन हमें ही डिसाइड करनी पड़ेगी एआई के युग में, और डिजिटल डिटॉक्स के लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। अब ये तो जैसे आपने बात की कि एआई का बहुत मिसयूज हो रहा है, उससे अलग अलग कंटेंट बना देते हैं और कई बार किसी की पर्सनैलिटी को भी उससे नुकसान हो जाता है, इस तरीके से उसका मिसयूज हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि अगर हम इसका सदुपयोग करते हैं एआई का, तो हम अपने आध्यात्मिक स्तर को भी बढ़ा सकते हैं इसका उपयोग करके।
जी, जैसे अगर बात करें, बेनिफिशियल तो है, टेक्नोलॉजी है, इसका प्रयोग करेंगे तभी हम आज के युग में एक साथ चल सकेंगे। अगर इसकी बात करें स्पिरिचुअल टूरिज्म, हेरिटेज एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म, अभी जिस पर भारत सरकार काम कर रही है कि किस प्रकार से एआई और अध्यात्म को जोड़ते हुए हम स्पिरिचुअल और हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा दें, जो हमारे विभिन्न राज्य हैं, विभिन्न राज्यों में हमारी संस्कृति को पुरजोर करते हुए कितने सारे मंदिर हैं, कितनी सारी दंत कथाएं उन दीवारों पर उकेरी गई हैं, जहां आज हमारे युवा पहुंच भी नहीं पाए हैं। एक बड़ी कमाल की बात मैं आज आपसे शेयर करना चाहूंगी कि अगर आप कल्चरल मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर भी जाते हैं, वहां पर आपको सभी वेद पुराण शास्त्र उपनिषदों के बहुत सारे मनुस्क्रिप्ट आपको रिटर्न फॉर्मेट में मिल जाएंगे। लेकिन क्या आज हम उन मेनुस्क्रिप्ट को पढ़ने में सक्षम हैं? उतना संस्कृत अनुवाद करके जितना हिंदी हम समझ सकते हैं, हम उतना समझ पा रहे हैं, लेकिन जो ज्ञान उन शास्त्रों में है, क्या वो हमारे युवाओं तक पहुंच पा रहा है? क्या हमारी जीवन शैली में उतर पा रहा है? आप में से, आप इतने जन यहां पर बैठे हैं, आप में से अभी तक आपने कोई पुराण या वेद शास्त्रों में से किस किस को अच्छे से पढ़ा है? किसी ने अगर पढ़ा है तो जस्ट आप एक बार हाथ खड़ा करके मुझे बताइए। जी सर, कौन कौन से, आप एक बार थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, ये बिल्कुल सार आपने बताया जी, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल सार भाई जी ने बताया कि जब तक हम खुद को चलाना नहीं सीखेंगे, खुद से करना नहीं सीखेंगे, तो कोई भी चीज संभव नहीं हो पाएगी। इसकी बात चल रही थी कि स्पिरिचुअल और हेरिटेज टूरिज्म, आप कल्चर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर भी क्या है कि आपको मनुस्क्रिप्ट सबकी मिल गई, लेकिन उसको जीवन में कैसे धारणा है, युवाओं को कैसे नई दिशा दिखानी है, उसका जिक्र वहां पर भी नहीं किया गया। या हम देख रहे हैं भगवत कथा हो रही है, या जहां भी स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, उसको प्रैक्टिस में कैसे लाना है, आज भी युवा उसमें भटक रहा है। अगर ये चीज नहीं होती तो इतने सारे सुसाइडल केस या बहुत सारे बच्चे हैं वो आज भी कश्मकश की स्थिति में रहते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। तो इसीलिए जितना भी ज्ञान हमारे अध्यात्म में लिखा हुआ है उसको पढ़ने के साथ साथ उसमें, जैसे अभी भाई साहब ने बताया सार गर्भित, कि अगर गीता को हम चार पंक्तियों में, सिर्फ एक श्लोक में बोल सकते हैं, उसका सार ले सकते हैं, तो ऐसे ही वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का सार गर्भित करके उसको जीवन में धारणा होगा, तभी जीवन एक आदर्श व्यक्तित्व बन पाएगा। अन्यथा इतने ही जन्म हो रहे हैं, उतनी मृत्यु हो रही है, जीवन चक्र चले जा रहा है, आज मैं हूं, कल आप, फिर परसों कोई और, ऐसे ये चलता रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम हमारे अध्यात्म का जो सार है, सार को लेते हुए और एआई के विज्ञान को लेते हुए, क्योंकि विज्ञान क्या है, इंसान ने मशीनों को बनाया तो क्या हुआ, विज्ञान, इंसान ने मशीनों को बनाया तो हुआ विज्ञान, और इंसान को जब हम इंसान बनाते हैं वो हुआ अध्यात्म। बड़ी सरल सी बात है लेकिन समझने में सालों लग जाते हैं, बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ से आप पूछें, लेकिन इंसान को इंसान बनने में भी सालों लग जाते हैं। तो हम विज्ञान तो बना कर चुके हैं, मशीन हम बना चुके हैं, एआई हमने जनरेट कर लिया है, लेकिन इंसानियत जिंदा रखना, अपने अंदर अध्यात्म के मूल्य चेतना को जिंदा रखना, वो तो अध्यात्म ही सिखाएगा। इसीलिए जीवन में हम एक चीज जो कर सकते हैं, हर चीज को कंपैक्ट रूप में, सार के रूप में, जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा पोथियां पढ़ें, उसका सार गर्भित, उस सार को आत्मसात कर लें, फिर देखिएगा जीवन में जो एक अलग सा चमत्कार होगा, फिर उसके लिए आपको अपनी खुशी, अपनी संतुष्टि दूसरे के अंदर तलाशने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं में मिलेगी और आपकी आभा खुद आपके व्यक्तित्व के बारे में बात करेगी, जो यहां पर भी सिखाया जा रहा है कि राजयोग कीजिए, कैसे संयम करना है, वो सारी शिक्षा, वो सारी चीजें ब्रह्म कुमारी इसके मन से हम सीख रहे हैं, स्वयं मैंने सीखा और बाकी सब हम सीख रहे हैं
जी। तो जैसे दीदी ने कहा कि अध्यात्म जो है वो बीज है, और एआई तक का मनुष्य उस अध्यात्म के सफर पे चलकर ही एक वृक्ष की तौर रूप में बढ़ता है, विज्ञान के रूप में बढ़ता है या एआई के रूप में बढ़ता है। दीदी, अंत में आपसे जान, एक समाज को एक संदेश कि हम एआई और हमारा आध्यात्मिक जो सफर है, स्पिरिचुअलिटी है, दोनों को सामंजस्य बनाते हुए किस तरह से अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जी सकें, समाज का विकास कर सकें, लोगों का विकास कर सकें, स्वयं का विकास कर सकें।
अब दीदी की इस प्रश्न का जवाब भी मैं थोड़ा सा डेमो देकर करना चाहूंगी, ताकि हम सब सभी को ये जो सेशन है याद रहे। पूनम जी एक बार आप यहाँ आएंगी, यहीं स्टेज के सामने आप
पूनम जी आ जाइए,
आइए यहाँ
एक मिनट डेमो के लिए,
क्योंकि अभी लंच का समय है, मैं समझ सकती हूँ सबको जल्दबाजी है, लेकिन ये डेमो हम करते हैं, इससे दीदी का उत्तर भी है, हमारे लिए प्रयास भी है, और सारी चीजें एक साथ। आप यहीं खड़े हो जाइए, यहाँ आगे आपको सीधे सीधे चलना, आंखें बंद कर लीजिए, देखना नहीं है, चिटिंग का कोई आपको मौका नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ मुझे सुनना है, आंख बंद करके जैसे मैं कहूँ वैसे करना है। ये दीदी का उत्तर मैं आपको डेमो करवाते हुए दे रही हूँ, आंख बंद कीजिए। पूनम जी सीधा सीधा चलिए, पहले थोड़ा सा राइट हो जाइए आप,
ममता ममता
ममता थोड़ा सा राइट हो जाइए, आपको देखना नहीं है, आंखें नहीं खोलनी है, प्लीज क्लोज योर आईज, थोड़ा सा राइट हो जाइए, और राइट थोड़ा सा और सीधे चलो, अब सीधे चलिए, एक कदम आगे, दो कदम आगे, तीन कदम, चार कदम, पांच, आगे चलते रहिए, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, तेज चलिए, पांच, छः, चलिए चलिए चलिए, एक सेकेंड रुकिए, अब इन्होंने क्या किया, ये टकराने वाली थी, ठीक है, जो मैंने बताया उतना चल रही थी, लेकिन तुरंत इनको लगा कि अभी कुछ गलत होने वाला है, जीपीएस तो मैं थी इनका, जीपीएस क्या है, एआई, जीपीएस एआई है, वो आपको हर एक अगला कदम बताएगा कि आपको चलना क्या है, अगला हिस्सा क्या है, ठीक है, लेकिन इन्होंने अपनी चेतना से अंतरात्मा से पहले आभास कर लिया कि मैं गिरने वाली हूं, मैं जीपीएस का नहीं मानूंगी, मैं अपनी अंतरात्मा और मेरी जो चेतना कह रही है मैं वो मानूंगी, इट मीन ममता जी अपनी चेतना को लेके जागृत अवस्था में है, इन्होंने एआई या मैं जीपीएस के तौर पर जो काम कर रही थी उस पर यकीन ना करते हुए खुद की चेतना से साइड पर होगी, और यही उदाहरण हम अपने जीवन में करना है, एआई का बखूबी इस्तेमाल कीजिए, भरपूर कीजिए, जितना आपको जीवन की ऊंचाइयों में जाना है उतना कीजिए, लेकिन जब सामने कोई समस्या बाधा उत्पन्न हो तो अपनी चेतना से, अपनी इंट्यूशन पावर से, और वो किसके पास आएगी, जो मेडिटेशन करता है, जो राजयोग करता है, जो ध्यान करता है, जो सत्व गुणों से समाहित जो हमारी आत्मा है, फिर आप अपनी इंट्यूशन से अपने जीवन में ये एग्जाम्पल और ये सॉल्यूशन ले पाएंगे और उस बाधा से बच जाएंगे। तो आपका जो जवाब है, जो ये संदेश है जो आज इस मंच से आप सभी के लिए मैं देना चाहूंगी, कि अपनी चेतना के साथ अपने आत्मा के स्वर से स्वर मिलाते हुए जीवन का हर फैसला करें, और आप सभी को शुभकामनाएं और सौभाग्य सबके साथ सदैव रहे, ओम शांति।
बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल डेमो करके आपको दिखाया कि कैसे आपको अपनी आध्यात्मिकता को, आपके इंट्यूशन को, है ना, आपकी इनर पावर को आपको यूज करना है, बाहर टेक्नोलॉजी का यूज करिए, उस इंफॉर्मेशन का यूज करिए, लेकिन विवेक अपना जागृत रखिए। और सारिका जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और इस सेशन के लिए मुझे लगता है कि आपको आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप दीदी से पूछ सकते हैं इस विषय में। अच्छा जी,
जी।
माइक प्रोवाइड कर दीजिए प्लीज, अपना नाम बताइए और फिर क्वेश्चन कीजिए।
अशोक बब्बर, श्रीगंगानगर, राजस्थान से।
अच्छा, किस मीडिया ग्रुप से हैं?
भास्कर, दैनिक,
अच्छा,
दैनिक भास्कर
जी।
जब ये बात क्लियर है, एआई को बनाया किसने, मानव ने,
बिल्कुल,
तो उस मानव ने उसके अंदर अध्यात्म क्यों नहीं भरा, उसके अंदर सारा कुछ भर दिया, जानकारियां भर दी, सब कुछ उसके अंदर भर दिया, जब अपने भराई उसमें सब दूसरा ही कुछ भरा है तो वो अपने वही चीज उगलेगा उसको, मतलब उसके अंदर अध्यात्म क्यों नहीं भरा गया।
आपने शायद सुना, हाँ। नहीं, हमने बताया था कि हम एआई का भी अध्यात्म को बढ़ाने में यूज कर सकते, अध्यात्म आप उसमें एआई में शांति नहीं भर सकते, शक्ति नहीं भर सकते ना
जी। नहीं, ये बात नहीं,
दीदी की बात
कुछ, सब कुछ अपने हम लोगों ने ही उसके अंदर, उसको जब निर्मित ही हमने किया है वो चीजें सारी वो ही बोल रहा है, मतलब तो उसमें अध्यात्म जब अपने उसको उसमें जनरेट ही नहीं किया तो वो अध्यात्म की चीजें कैसे बताएगा।
दीदी की बात में कुछ पंक्तियां ऐड करते हुए, जो पहले हमारा जो सबसे पहला प्रश्न था ना, उस प्रश्न में आपके इस उस उसका उत्तर भी निहित है कि इंसान ने मशीनों को बनाया, ठीक है, लेकिन इंसान को इंसान बनाना ही अध्यात्म है। अब आपका कहना है कि एआई में अध्यात्म की आपको मनुस्क्रिप्ट्स मिल जाएंगी, आपको वेद पुराण शास्त्र उपनिषद सब मिल जाएंगे, लेकिन जो आत्मा की चेतना है, इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है, इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है, मन, मन से श्रेष्ठ, बुद्धि से श्रेष्ठ, वो आत्मा, आत्मा की चेतना, वो तो परमात्मा का काम है, वो एक इंसान उसमें कैसे ला पाएगा, वो चेतना यही तो विषय है कि आत्मा सर्वश्रेष्ठ है, उसकी चेतना तो परमपिता परमात्मा जो सुप्रीम क्रिएचर है वही दे पाएगा। और
इसको एक लाइन में क्लियर करना चाहूंगी कि एआई है वो मानव निर्मित है, लेकिन मानव परमात्मा निर्मित है, तो परमात्मा की क्रिएशन मानव की क्रिएशन से बहुत ग्रेट है। हाँ जी,
ओम शांति दीदी।
जी,
डीडी पारिक, दैनिक भास्कर, श्रीगंगानगर।
जी जी,
मेरा सवाल आपसे ये था कि जैसे आपने बताया कि इस मशीन के अंदर अनुभव नहीं है, आत्म अनुभव नहीं है, भावनाएं नहीं है, लेकिन इसमें बुद्धि है लेकिन बोध नहीं है, तो हम धर्म शास्त्रों की किस प्रकार से इसमें व्याख्या करेंगे? संत साहित्य हमारा बहुत प्राचीन काल का, हमारा संत साहित्य बड़ा बेजोड़ है वो, तो किस प्रकार एआई उस संत साहित्य की व्याख्या कर पाएगा?
एआई व्याख्या करने में तो इसका कोई सानी ही नहीं है, कोई बेजोड़ है, कि जितना आप इसको कंटेंट देंगे कि हमें इन पुराणों की या इन उपनिषदों की व्याख्या करनी है, वो आपके सामने हो जाएगा, वो पूरा स्वरूप आ जाएगा। पर उस व्याख्या का, उस स्वरूप को आप कैसे अपने जीवन में उतार पाएंगे, प्रश्न फिर वही आ जाता है कि जब तक व्याख्या, मेरे सामने सारे पुराण हैं, सारे शास्त्र हैं, व्याख्या आ गई, आपने पढ़ लिया, लेकिन समझना, संवेदना, वही चेतना का काम है। और वो संवेदना और वो चेतना, वो आत्मा जब परमात्मा के मार्ग पर चलती है, परमार्थ के मार्ग पर चलती है, मानव कल्याण के मार्ग पर चलती है, तभी संभव है। क्योंकि जैसे एक में पंक्ति, हाँ जी, बुद्धि तो है पर बोध नहीं है, और बोध चेतना से आएगा, और चेतना जब आप परमात्मा के मार्ग पर चलेंगे, सत्वगुण से संपन्न होंगे, तब आप कर पाएंगे। अंतिम जो एक जो श्लोक है, शायद हम सब यहां से लेकर जाएं, योगस्य कुरु कर्माणि, योग कुरु कौशलम, योग के साथ हमारा कर्म निहित हो तो शायद हर कर्म में बोध हो जाएगा। और एक जो बड़ी लास्ट क्लोजिंग इस चीज को हम करते हैं, यद भाव तथा भवति, जैसा आप मन में भाव लेकर आते हैं वैसा ही हो जाता है। यद भावम तदा भवति, अगर आज आपने सोच लिया कि आप एक राजा हैं और परमार्थ के मार्ग पर पूरे संसार का कल्याण करने के लिए आपने पद यात्रा शुरू कर दी है, तो आप उसका जीवन जीने लगते हैं। आपके अंदर की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उस क्वांटम तक, उस पॉइंट जीरो तक पहुंचती हैं कि मैं राजा हूं और मैं समाज के लिए कल्याण करना चाहता हूं, जितना मेरे पास है सब कुछ त्याग करते हुए परमार्थ के मार्ग पर चलना चाहता हूं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, क्वांटम तक पहुंचते हुए हम वैसे ही हो जाते हैं और कहते हैं जैसे आप होते हैं, आपकी प्रतिध्वनि यूनिवर्स में ट्रेवल करते हुए आप तक पहुंचाती है। अगर कोई इंसान राजा जैसा जीवन जीता है तो वो वहीं से ही शुरू हो जाता है। तो आपका जो प्रश्न का उत्तर है वो भी इसी बात में निहित है।
थैंक यू आप सभी लोगों का, और दीदी आपका भी दोबारा से शुक्रिया। ओम शांति। अभी इसके बाद हम एक मिनट